777.
Sale, sale, sale.
Sodi Furniture, stock clearance.
Everything on floor, to go, warehouse, furniture sale.
Ji haan, Sodi Furniture, lagat ki kimat se kam kimat par furniture khareediye. Furniture ki is sale ka fayda uthane ke liye, Sodi Furniture Showroom, 142 Kennedy Road South in Brampton. Huge sale, jo le gaya, so le gaya.
Jo reh gaya, so reh gaya.
Sodi Furniture, naya saal, naya furniture. 905-874-7171 Sodi Furniture Store Clearance.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care.
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजर्स कॉस्मेटिक्स की बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी क्रिसमस वेयरहाउस सेल खास आपके लिए आ रही है। वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन, पर्सेस, लगेज, डिजाइनर सनग्लासेस, नेल एंड हेयर कलर्स और भी बहुत कुछ। 80% तक की सेविंग्स रहेगी। बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम। ध्यान रहे, सेल इज फ्रॉम नवम्बर 16 टू डिसम्बर 8, फ्राइडे सैटरडे और संडे से मंडे। Lisa's Warehouse Sale, yani zyada savings for less. Visit lisascosmetics.com. इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350,
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773, 6472903773।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
ओह, दुबई जाना है।
वो क्यों?
बेटी की शादी है, सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
ए छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस को बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज़लिंगटन की नुक्कर पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 416-744-7534। कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स।
Amex Travels five star Hajj packages. आप हज पे जाना चाहते हैं? Confusing Hajj app के हाथों परेशान मत हों। नियत आपकी, बुलावा रब का, इंतजाम और एहतमाम Amex Travel का। Air tickets, Medina, मक्का, Mina tents, Arafat camp, हरम के सामने होटल की सहूलत से लेकर documentation, visa, हर चीज सिर्फ Amex Travels के साथ। Limited seats, call Amex Travel.
Elite Hajj 2025 packages exclusive. Special deals for US, Canadian, Pakistani passport holders. Limited seats.
Book now. Call 416-599-5200. 416-599-5200. First one,
भी मॉर्गेज या फिर हो गए लोन। सोचो ना बस बिल्कुल भी, हुने मिलाओ फोन
416-502-8000। स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या कख दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000। लाइसेंस नंबर 10845। इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
मोमिन हलाल मीट एनिवर्सरी सेल, आप लोगों ने बहुत तआवुन किया, इस खुशी में हर चीज सेल के ऊपर है। लैम्ब शोल्डर 699 पर पाउंड, बीफ बोनलेस 599 पर पाउंड, चिकन कीमा या चिकन थाइस 399 पर पाउंड, चिकन लेग 199 पर पाउंड, हर चीज ऑन सेल मोमिन हलाल मीट एनिवर्सरी सेल। और हाँ, 22 नवंबर को तो चाय भी होगी, जलेबियां भी होंगे, समोसे भी होंगे। पहुँचिए मोमिन हलाल मीट 1010 Green Crescent in Mississauga, just north of Eglinton on Terry Fox.
क्या आप या आपके किसी अजीज ने अपने प्यारे को खोया है? हम सोच मेंटल हेल्थ पर आपके मुंतजिर हैं इस 5 हफ्ता वर्चुअल ग्रीफ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। मैं उर्दू अंग्रेजी ग्रुप शिफाए दिल की सहूलतकार हूं और ये प्रोग्राम जुमेरात 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे अदारे और सेशन हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि गम और हमारे जज्बात से निपटना मुश्किल हो सकता है। हम आपकी मदद कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल कीजिए maryam@sochmentalhealth.com, दैट इज maryam@sochmentalhealth.com।
बिरयानी तो ठीक है, लेकिन भाई डिनर मीठे के बगैर अधूरा होता है। कोई देसी मीठा नहीं है?
अबू, कनाडा में आके भी आपका देसी मीठे का शौक नहीं गया?
क्यों ना जाए, मुल्तानी डिलाइट सोहन हलवा है ना, ताज़ा कनाडा में बना और बिल्कुल वैसा ही जैसे बैक होम में मिलता है।
हाँ, अब डिनर पूरा हुआ।
मुल्तानी डिलाइट सोहन हलवा, हर खाने के बाद मिठास भर दे। GTA में देसी ग्रोसरी स्टोर्स पे दस्तयाब या ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही विजिट करें multanihalwadelights.com 416-270-4439 416-270-4439। मुल्तानी डिलाइट सोहन हलवा, ऑलवेज फ्रेश।
खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर के साथ डीप तल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं। कॉल हैरी सॉन नाउ 6472281000 हैरी सॉन ऑफ मेजेस्टिक मॉर्गेजेस।
जी सामाई नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम सेहतमंद होंगे। भाई हमारा और आपका साथ आज भी रहेगा, बताऊं मैं आपको? बता देते हैं साहब, इन योर कार्स विल बी देयर टिल 4:15, पौने 5 बजे तक, मगर हम तो 24 आवर्स आपके साथ हैं। नंबर तो याद हो गया होगा आपको, 6478724900 हमारा फोन नंबर है, अभी डायल करके देख लें आप। एक डायल टोन के फौरी बाद आप हमारे साथ होंगे 24 आवर्स, और स्पेशली आज जब 5 और 6 की पूरी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट आपके साथ आमिर एंड शाजी जी पेश करेंगे, तो सब हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा क्या बताऊं आपको मैं, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम होंगे, कुछ स्पॉन्सर्स से हमारी आपकी मुलाकात भी करवाएंगे हम, आपके फायदे के लिए जो भी सेल लगी हुई है कहीं पर भी हम बताएंगे। आज थर्सडे का दिन है, नवंबर की 21st एंड 5 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त, शाम होते होते 5 ही रहेगा और फिर आज रात को 4 डिग्री टेम्परेचर। कल बारिश होगी सब, आज कल कल रात को भी क्या आपने सुने गरज गरज और धमाके वाले ओ बड़े बादल गरजे भाई, पता नहीं आपके मोहल्ले में गरजे नहीं गरजे, हमारे हमारे मारखम में तो बड़ा गरज रहा, बड़ा गरज रहा भाई, जो कहते हैं वो गरजते और बरसते नहीं है, मगर वहां पर तो बरसे भी, गरजे भी और बरसे भी।
प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं, जाहिर है पौने दो घंटे के बीच में बड़ी सारी चीजें कवर करनी है, बहुत शुक्रिया। जैसे माजिद भाई ने कहा ना कि अगर आपने स्टूडियो में कॉल करना है 4166201778 हमारे स्टूडियो का नंबर है, मगर अगर कहीं स्टैटिक होगा तो आपने उस समय हमारा लोकल नंबर है। मुझे इस पे कम्प्लेन मिली है और मैं बल्कि अपनी टीम के लोगों से कहती हूं कि प्लीज इसको देखिएगा 6478724900 8724900 जिस पे आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। अगर इसमें क्वालिटी का डिफरेंस है तो मेरा ख्याल है जीशान और ग्रेग इस चीज को चेक जरूर करेंगे कि आवाज की क्लैरिटी में क्या मसला है। जाहिर है जो प्रोवाइडर है या तो फिर उसको कॉल किया जा सकता है। एक और चीज जो हमारी है वो हमारी वेबसाइट है eawaz.com www.eawaz.com जिसमें आप न्यूज़पेपर अंग्रेजी का न्यूज़पेपर उर्दू का न्यूज़पेपर देख सकते हैं, ऑनलाइन है। और अगर आप टेलीविजन पे आए तो ई आवाज पे ही आके हमारा टेलीविजन वॉच भी कर सकते हैं। वैसे तो हर घर में आईवी बॉक्सेस हैं, तो उर्दू चैनल्स में अगर आप आए तो ई आवाज के नाम से, ई इलेक्ट्रॉनिक आवाज, ई आवाज के नाम से तो देख सकते हैं। वैसे आज हम आपके साथ रहेंगे तकरीबन 6 बजे तक। बहुत शुक्रिया मेरे उस लाहौरी भाई का, परसों कॉल किया था 7120 आपका नंबर है, आपने कहा अक्सर मैं गाड़ी में ही होता हूं, सुनते हैं। प्रोग्राम के हवाले से आपकी बहुत अच्छी सजेशन थी, थैंक यू वेरी मच। मगर 770 आपका अपना चैनल है, दिस इज नॉट अ रेडियो प्रोग्राम, इसमें मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ज़ाहिर वी आर लाइसेंस फॉर द मॉर्निंग टाइम, इवनिंग में फॉक्स के पास यही वाला चैनल होता है। रात में हमारी नशरियात आप जो लोग ऑनलाइन सुनना चाहें, ऑनलाइन हम 24 आवर्स हैं आपके साथ, बाकायदा उसकी प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्राम प्रोड्यूस किया जाता है हर घर में। अब आपको बताइए, एक जमाने में अखबार बहुत बिका करते थे, अब अखबार नहीं बिकते, ऑनलाइन चले गए हैं, ज्यादातर चीजें हम अपनी उंगलियों की टिप्स के ऊपर हमने रखी हुई हैं, तो चाहे वो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो अब रेडियो है, जो कुछ भी है, गीत संगीत भी होते हैं, गजलें भी होती हैं, कॉमेडी प्रोग्राम्स भी हुआ करते हैं, 24 आवर्स का ये चैनल होता है। ऑफकोर्स इस तमाम के बीच हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे मददगार और मुआविन होते हैं। कल का जो एक वाकया हुआ था आपने देखा ही था परसों का, के वो जो ये चार के चार बच्चों को अरेस्ट किया गया, ऑल यंग
213, 116, 117
या 13, 17 और उनके नाम ज़ाहिर जुबिनाइल एक्ट के तहत उनके नाम नहीं आए। अब इमेजिन कीजिएगा कि रॉबरीज जो हैं वो कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। मेरे एक भाई ने मुझे 4 दिन पहले कॉल किया था, आई थिंक ही कॉल्ड मी फ्रॉम मिल्टन, शुएब शायद उनका नाम था। उन्होंने मुझे कहा कि जब आप पेयर पे बात करते हैं तो मतलब स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से तो पाकिस्तान की आबादी से, मैं रैंडमली आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि यहां पर अगर 41 करोड़ आबादी है तो आप इमेजिन कीजिएगा कि अभी आप शाम में चले जाएं, ट्रैफिक कितनी बुरे तरीके से ब्लॉक होती है, और आप इमेजिन कीजिएगा कि हम एक तरफ तो ये कार्बन टैक्स हमने लगा दिया, ऊपर से जब इतनी देर गाड़ी का इंजन आप चलाएं ना अपने घर में, अपने गैराज के बीच में गाड़ी को चला के रखें और आप देखें पूरे के पूरे घर वाले जो हैं वो सोए पड़े होंगे सुबह, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें पैदा होती है। और आप इमेजिन कीजिएगा कि जब ट्रैफिक, इस चीज को हम गौर नहीं कर रहे कि जो कंजेशन, और हमारे पॉलिटिशियंस भी इन बातों को गौर नहीं कर रहे कि जब ट्रैफिक की कंजेशन है और ट्रैफिक ब्लॉक है, ना चलने के बराबर चल रही है, तो आप सोचिएगा गाड़ी का इंजन तो चल ही रहा है ना, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज है। इसकी छोटी सी मिसाल मैंने आपको ये दे दी कि आप अपने गैराज को बंद करके आप 2 मिनट के लिए, इट्स वेरी अनहेल्थी, मौत वाकई हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का खराज इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता, सोया सोया ही सो जाता है। तो ये तो एक गाड़ी की बात करें जब आपने गैराज को बंद कर दिया, और जब एनवायरनमेंट के बीच में बेशुमार गाड़ियां, इसके लिए जाहिर है इकोनॉमी के चलने के लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, मगर कॉन्ट्रैक्ट्स वो करें जहां पे एक्टिव काम हो रहा हो। मगर आपने हर सड़क को अगर 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए ब्लॉक करके रख दिया और पूरी की पूरी ट्रैफिक आपकी पेट्रोल مہنگا ہے، کاربن ٹیکس آپ وہاں پہ ہم سے چارج کر رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں آج بلکہ کنزرویٹو کے لیڈر نے بڑی پیاری بات کیا، اس نے کہا یہ $250 کی ریبیٹ دینے سے اور ایچ ایس ٹی چھوڑنے سے اکانومی کی حالت بہتر نہیں ہونی. آج بلکہ میں وہی ایک تقابلی مقابلہ کر رہے تھے کہ تونیزیا میں یوتھ انکم ڈسپیرٹی کی وجہ سے چینج آیا تھا، ریولیوشن ہوا تھا 2011 میں. اس کے بعد پھر ایجپٹ میں یہ ریولیوشن ہوا، یہ بھی ریولٹ جو تھا ینگ لوگوں کی وجہ سے ہی آیا تھا. بنگلہ دیش کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، انکم ڈسپیرٹی کی وجہ سے ہوا تھا کہ لوگوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، کوئی بہت امیر ہے اور کوئی بہت غریب ہو گیا، اور سیم چیز اب یہاں پہ بھی. اور چوریاں اگر بڑھنا شروع ہو گئیں تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوتی ہوں لا لیسنیس کے بارے میں کہ لا لیسنیس کا اگر اتنی سی آبادی کے اوپر اتنا فرق پڑتا ہے تو ہمارے ملکوں کی آبادی تو 6 سے 7 گنا اس سے آبادی زیادہ ہے، مگر اس میں لوگ دیکھ لیں رہ بھی رہے ہیں. مگر یہاں پر اگر اتنی سی آبادی کے ساتھ ہی اگر کنٹرول سے چیزیں باہر نکلتی ہیں تو پھر کیا ہوگا. بائی دا وے یہاں پر اسکیمرز بہت سارے ہیں. میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کبھی کسی سے آپ کو میں کیا مشورہ دوں. بہرحال اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کوئی ابھی آج ایسا زندگی کا کوئی اتنا برا ہوا تو نہیں ہے کہ میں کوئی اس کی اگزامپل دے سکوں، مگر بعض اوقات انسان بار 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 اپنی زندگی میں دھوکہ کھاتا ہے. یہ ایک خاتون ہے ٹورنٹو ایریا کی، اور ان کے گھر میں یہ تو میں خاتون کا نیوز میں کور کر رہی ہوں، میں آپ کو اپنے ایک پاکستانی بھائی کا بھی تذکرہ کرتی ہوں. میں پاس ان کا نام نہیں ہے، ملٹن میں یہ صاحب رہتے ہیں اور ان کے گھر میں ریپیئر کرنے کے لیے وہ سڑک پہ جیسے نہیں ہوتے چلے پھر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ کی چھت جو ہے وہ ریپیئر ہو سکتی ہے، آپ کو تو چھت کا کچھ پے بھی نہیں کرنا پڑے گا، انشورنس کمپنی سارا کا سارا پے کریں گی. یہ بھی بیچارے سادہ انسان ہیں، انہوں نے کہا اچھا چھت چینج ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ اچھا ہم اوپر جا کے دیکھتے ہیں. اوپر جا کے گئے، اوپر سے جا کے جناب تصویریں اتار کے لے آئے، تصویریں اتار کے لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تو چھت کا حال بہت برا ہے اور یہ تمہاری چھت ریپیئر ہوگی، تم فوراً سے پہلے اپنی انشورنس کمپنی کو کال کرو. خیر انہوں نے لائٹ لیا، اس بات پہ اتنا نوٹس نہیں دیا. اور مزے کی بات ہے یہ جو کمپنی چھتیں بنانے والی ہے یہ بھی ایک پاکستانی، اس کا اونر بھی پاکستانی ہے. انہوں نے وہ ڈیلے کر دیا، انہوں نے جناب کورٹ کے ذریعے ان کو گھر میں چارجز بھیجوا دیے کہ تم سے کہا تھا کہ تم اپنی چھت کے بارے میں اپنی ان سے پتا کرو. $22,000 کے $21,000 کے چارجز ان کے گھر بھیجوا دیے. اب وہ بیچارے فائٹ کر رہے ہیں اس بات کو. پھر الٹیمیٹلی اب انہوں نے انشورنس کمپنی کو کانٹیکٹ کیا، وکیل کو کانٹیکٹ کیا. آپ سوچیے سٹریس کتنی آتی ہے. وکیل کو کانٹیکٹ کیا، وکیل کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے انشورنس کمپنی کو کانٹیکٹ کیا. انشورنس کمپنی کا تمہاری تو چھت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور البتہ تمہارے گراج کے اوپر کی چھت جو ہے نا وہاں پر ہے، اس کا $2,500 انہوں نے ان کو دیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. اور یہ جو کمپنی جس نے فراڈ کیا اس کا مالک بھی پاکستانی ہے جس نے ان کو $22,000 کا بھیجا. یہ ایک اور جو واقعہ آج ٹورنٹو کا ریکارڈ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، وہی کے گھر میں چھت بنانے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا اوہ تمہاری تو چھت اوپر گئے، اوپر جا کے تصویریں میں رہتا رہے، کہ اوہ تمہاری تو چھت بہت خراب ہے، تمہاری تو چمنی بالکل گر گئی ہے، اور اگر یہ چھت گھر گر گیا تو تمہارے تو تمہیں تو لینے کے دن. عورت کے ہاتھ منہ پھول گئے. انہوں نے کہا اتنی بھیانک تصویر پیش کی، اتنی بھیانک تصویر پیش کی کہ خدا کی پناہ.
تصویریں بھی عارفہ جی ان کے پاس پرانی تصویریں پڑی ہوتی ہیں جو دکھا رہے
ہیں، اتنی بھیانک تصویر. اچھا یہ بیچاری خاتون سادہ سی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو انہوں کو لگا جاتا ہے چھت بھی گر جانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تبھی کام شروع کر سکتے ہیں اگر تم ابھی پیسے ٹرانسفر کو. $158,000 اس عورت نے ان کو دے دیا، ای ٹرانسفر کیا بینک کے ذریعے جا کے ای ٹرانسفر کیا. اس کے بعد نہ تو وہ بندے آئے نہ کچھ. اور پھر یہ مطلب قانون کی واقفیت بھی تھی، اور پھر اس نے مین اسٹریم کے ایک چینل کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے پولیس کو کانٹیکٹ کیا. تو جی پولیس نے $80,000 تو اس کو واپس کرا دیا. 158 دے وچوں 80 گیا تے 8 دونی 16، 80,000 ابھی بقایا رہ گیا. کہتی شکر ہے $80,000 تو واپس مل گیا، انشاءاللہ باقی بھی مل جائے گا. تو دیز فراڈسرز آر دیئر. میں بلکہ جب ذکر کر رہی ہوں تو یہاں پر ایک اور فراڈ ہے، اور اگر آپ اس فراڈ کا حصہ بنیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. کہ جہاں کہیں پکڑ ہوتی ہے قانون 90 دن 99 دن چور کے ہوتے ہیں، ایک دن سات کا ہوتا ہے، और ये भी हमारे अपने ही लोग हैं। बाय द वे, एक कम्प्लेन हमायूं शेख साहब आप मेरे नोटिस में लेके आए थे, मैंने पाकिस्तान के आला तरीन इदारे तक भी वो वॉइस मेल भी भिजवा दी, वो फोन नंबर भी भिजवा दिया। मुझे कल बताया गया था आज या कल या अगले दो दिन में वो आदमी अरेस्ट कर लेगा, बिकॉज आपको पता है ISI के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ISI आपकी टेलीफोन की लोकेशन से उस बंदे को ट्रैक करती है। और वो जो झांसा देते हैं पाकिस्तान में कि तुम्हें कनाडा चले जाओगे, तुम्हें $3,000 की तनख्वाह, अगर तुम तनख्वाह नौकरी अच्छी करोगे तो हर महीने तुम्हारा $300 और बढ़ जाया करेगा, तो एक साल के बीच में तुम्हारा तकरीबन 2,500 वो बढ़ जाएगा और वगैरह वगैरह। उस बंदे की पूरी रिकॉर्डिंग मैंने वहां भी भिजवा दी, यहां कैनेडा में मैंने हारून खान साहब को भिजवा दी थी, उन्होंने भी कल पुलिस के सुपुर्द वो कर दिया। यकीनन इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको लाजमी तौर पे पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से सादा लोग जो हैं वो इनके नरके में आ जाते हैं। माजिद जमाल साहब का इलाका जो कि है मेकावन एंड से 14th Avenue बनता है, पर थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाए मार्कम और फिंच, मेकावन और फिंच के इलाके में एक घर में एक बड़ा दुख हुआ। ऑनेस्ट टू गॉड ये खबर पढ़ने के बाद माई हार्ट वॉज टोटली ब्रोकन, के बच्चों की भी प्रॉब्लम है कि बच्चे बेचारे क्या करें, और हमारी भी प्रॉब्लम यह है कि हमने बाज़ुकात अपने आप को ऐसी अजीब चीजों में फंसाया हुआ है कि खुदा की पनाह दुनिया के साथ मुकाबला करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। तो ये पुलिस को कॉल किया गया, एक आदमी की स्टैबिंग हो गई थी, पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस घर पे आई तो बाप जो था वो जख्मों की ताब न लाते हुए बाप की डेथ होगी, बेटा वहीं पे खड़ा हुआ था, और उस भाई की जो बाप था उसकी बहन यानी इस लड़के की फूफो भी वहां पे मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मेंटल इलनेस का शिकार था मेरा 66 years old ब्रदर जो था वो मेंटल इलनेस का शिकार था। टू बी ऑनेस्ट माई हार्ट वॉज टोटली ब्रोकन कि बाप का बेटा, माँ बाप के यहाँ बच्चा पैदा होता है, माँ बाप इतनी चाहत से पालते हैं और फिर पता नहीं क्या हो जाता है, मगर बच्चे का भी कसूर इसमें नहीं है कि बाप जिस मेंटल स्ट्रेस से या मेंटल प्रेशर में से गुजर रहा होगा, ना मालूम क्या हुआ होगा कि बेटे ने, वो कहते हैं मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है मगर अब डेथ होगी शायद, और कहते हैं वो बच्चा भागा भी नहीं था, वो ही वॉज देयर इन हिज होम, अल्टीमेटली उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। आज 21 नवंबर का दिन है, मेरा दिल था कि मैं आपके साथ इस्लामिक और दूसरे महीनों के लिहाज से भी चीजों को कवर करती चली जाया करूं, तो मैं वही देख रही थी आज पंजाबी महीनों में, ये भी चांद के महीनों के लिहाज से होते हैं, मगर की 7 तारीख है और जमादी उल अव्वल की 19 तारीख है, आज 21 नवंबर का दिन है, 21 नवंबर जमादी उल अव्वल की 19 तारीख है और मगर की 7 तारीख है, जो चेत वसाख भादो अस्सू कत्ते नहीं वो वाले महीनों के मगर का महीना है। आइए साहब यहां से मैं आपको लेके जाती हूँ एक और न्यूज, बहुत सारी न्यूज दुनिया की न्यूज है, एक गीत आपको सुनाना चाहती हूँ और इस गीत को सुनिएगा, और इस गीत को बनाने वाला शख्स AR रहमान, अगेन इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, 29 years ऑफ मैरिड लाइफ, पसंद की शादी मगर AR रहमान, मैं कभी कभी, और AR रहमान की जो वर्ड्स है ना वो उन्होंने मेरा दिल चीर के रख दिया। वही बात है, दो तरह की सेपरेशन होती है, एक जो रबों सेपरेशन हो जाए और एक जो दुनिया की वजह से सेपरेशन हो जाए। ये मौसीकार, हिंदुस्तान के मौसीकार तलल, क्या ये जो श्रीलंकन मूवीज हैं उनके बहुत खूबसूरत इन्होंने गीत दिए हैं। AR रहमान, उनकी बेगम सायरा बानो, उनके दरमियान शादी के 29 साल के बाद डाइवोर्स होगी, उनकी वाइफ के जो लॉयर हैं उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है, बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर इन्फॉर्म किया है। AR रहमान ने इसके बारे में, मेरा ख्याल है कि देवर फाइटिंग अगेंस्ट दिस थिंग, के शायद घर में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। AR रहमान ने सोशल मीडिया पर अपने तासरात जब बयान किए, उन्होंने लिखा था, हमने 30 साल साथ गुजारने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम चीजों का एक इंजाम होता है, टूटे हुए दिलों के बोझ से खुदा का तख्त भी कांप जाया करता है। वो एक है ना, आपको भी बताए कि तलाक जो है वो जायज है मगर इससे अर्श भी कांप जाता है, आपने भी ये सुना होगा। तो उन्होंने, AR रहमान ने उसी के लिहाज से लिखा है कि टूटे हुए दिलों के बोझ से खुदा का तख्त भी कांप उठता है। اور وہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ہم بعض اوقات اس بکھرنے کا اور خاندان کے تین بچے ہیں ان کے خاندان کے ٹوٹنے کا وجہ تلاش کرتے ہیں، مگر پھر ہم یہ سوچ کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تین بچے ہیں اور ان کے وکیل جو ان کی وائف سائرہ بانو ہیں، ان کے وکیل نے یہ چیز شیئر کی ہے. آئیے صاحب، سپانسرز کا بہت شکریہ جو اس قابل کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. میں اپنے سپانسرز کا شکریہ، دو سپانسرز کا، بلکہ میں ہمارے ساتھ جو ایک سپانسر اس وقت آن لائن ہے میں ان کو بھی کہتی ہوں. مجھے بتائیے، تو امیر لوگ ہیں، آپ یقین کیجئے گا، ایک کمرشل کی مارگیج کرتے ہیں تو 30 ملین کا کمرشل، تو میں تو 30 ملین کی ایک چیز بیچ لوں تو ساری زندگی کام ہی نہ کروں، پھر میں شیطان کی ورک شاپ بن کے بیٹھی ہوں. تو آپ کی ملاقات شیراز شفیق سے کروانے لگی ہوں، مگر دو اچھی باتیں کرنا چاہتی ہوں، بلکہ میں شیراز کو بھی کہتی ہوں کہ شیراز آپ بھی مومن حلال میٹ کی طرف جائیں. یہ مومن حلال میٹ نا 10-10 ڈریم کریسنٹ کے اوپر ہے، بلکہ آپ وزٹ کریں. کل میں بلکہ گوشت لے کے گئی، آپ یقین کریں اتنا اچھا بنا. 22 نومبر کو ان کی اینیورسری سیل ہے مگر وچ از ٹمارو، اور چائے پانی جلیبیوں کا بندوبست ہوگا، سموسوں کا بندوبست ہوگا، مگر اگر آج بھی آپ جائیں اور ساز و باز کا حوالہ دیں تو مومن حلال میٹ آنر کرے گا. آپ دیکھیے گا کہ جو لیمب شولڈر ہے وہ میں نے لیا 699 پر پاؤنڈ، بیف بھی سیل پہ تھا وہ بھی مجھے سیل پہ ہی ملا بیف بھی، اور چکن جو قیمہ ہے 399 پر پاؤنڈ ہے، اور اگر چکن کا آپ لیگز لینا چاہتے ہیں وہ 199 پر پاؤنڈ آپ کو ملیں گی. اٹس اینیورسری سیل اور دے آر اکنالجنگ ایون ٹوڈے. بہت پیارا آدمی ہے وسیم بھائی، آپ جائیے جا کے ان سے ملاقات کیجئے گا اور ضرور گوشت لے کے جائیں، بہترین گوشت ہے. یعنی گلنے میں اتنا اچھا، ایسے منٹوں میں ہرن کی گوشت کے جیسا نہیں ہے، اچھا گوشت ہے. 10-10 ڈریم کریسنٹ پہ، دس از جسٹ نارتھ آف ایگلنٹن آپ کو ملتا ہے، ٹیری فاکس اینڈ ڈریم کریسنٹ کے انٹرسیکشن پہ مومن حلال میٹ. ایک اور انفارمیشن دینا چاہتی ہوں، میرا خیال ہے کہ شیراز نے عمرے پہ گئے تھے یا لاسٹ ایئر یہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اسی سال 2024 میں، مگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری کمپنیاں کینیڈا سے لے کے جاتی ہیں. میں ان کو کیا نام لوں، مگر آپ سوچئے کہ وہاں پہ اگر آپ حج کرتے ہیں تو آپ کا جو کاسٹ آتی ہے وہ تقریباً 18,000 سے لے کے 22,000 کے درمیان ڈپینڈنگ اپون. یہ لوگ اسٹے دیتے ہیں بالکل جہاں پہ رمی ہوتی ہے اس کے بالکل سامنے اسٹے دیا جاتا ہے. یہاں پر پچھلے سال سے یہ نئی آپشن آئی ہے، اٹس اے گریٹ آپشن، کہ وہ پاکستانی جو جن کے پاس کینیڈین پاسپورٹس ہیں اور آپ کے پاس پاکستان کا یا نائکوپ ہے یا پاکستان کا پاسپورٹ ہے، تو آپ آدھی قیمت کے اوپر، بالکل آپ نے اسے سنا، آلموسٹ ہاف پرائز پہ سیم فیسلٹی، یعنی جمعرات کے لیے آپ سمجھ لیجیے گا بالکل ٹرین کے سامنے اور بالکل جمعرات کے سامنے منا میں آپ کو جو اسٹے دیا جاتا ہے وہ بہت کمال کی جگہ پہ دیا جاتا ہے. یہ پاکستان دبئی سے یہ آپ کو اکٹھا کرتے ہیں، تو آپ یو کین سیو الاٹ. آلموسٹ ہاف پرائز ہے، لیس دین ہاف پرائز دین جو آپ یہاں کینیڈا سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہی 10,000 جو بچے گا وہ کسی غریب کی شادی کرا دیجئے گا، وہ غریب کو اپنے رشتہ داروں کو کیئر کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو موقع دے دیں حج کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ 5-star پیکج ہے، ایگزیکٹلی سیم جو اس میں قربانی کا انتظام، حج کا انتظام، کھانے کا انتظام، رہائش کا انتظام، آپ کو جو ٹینٹس میں وی آئی پی ٹینٹس منا میں اور عرفات میں وی آئی پی ٹینٹس جس میں پکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، مطلب کمال ہے صاحب. آپ رابطہ کیجئے گا امیکس ٹریول سے، امیکس ٹریول ماز ان کا نام ہے، 416-599-5200. میں ذاتی طور پہ پچھلے سال جانتی ہوں چند لوگوں کو، اللہ نے ان کو بہت دیا ہوا، اتنا دیا ہوا ہے کہ اللہ کی شان ہے. اینڈ دے وینٹ ٹو دس حج فرام پاکستان، اینڈ آنےسٹ ایون دے کیم، وہیں پہ وہ ٹھہرے بالکل جمعرات کے سامنے جہاں پہ کینیڈین لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور امریکن ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں کے ساتھ ہی ان کے خیمے تھے. टेंट्स थे इरफात में और वीआईपी स्टे आपको दिया जाता है। तो बहरहाल माज से राबता कर लीजिए 416-599-5200 हाफ प्राइस में। शिराज से मुलाकात करवाना चाहते हैं, शिराज अकाल मॉर्गेजेस के साथ हैं शिराज शफीक अकाल मॉर्गेजेस साल से आपके, और वो कहते हैं अगर हम यस कह दें तो फिर हम आपका काम करते हैं। ठीक है, नंबर आप नोट कर लीजिएगा 416-502-8000 502-8000। वैसे मैं एक और नंबर भी देनी हो तो कॉल करें, आज ये डायरेक्ट नंबर है 289-242-6286 242-6286 एरिया कोड 289 है। शिराज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आपका जी अल्लाह का शुक्र है, आपका ठीक है?
अल्लाह का बहुत शुक्र है। शिराज आप भी मुझे पता है उमरा करने के लिए जब गए, बहुत से लोग यहां से भी जाते हैं, आप भी उमरा पाकिस्तान से करने के लिए गए थे, और अब पाकिस्तान की कंपनियों में देखिए जी, पाकिस्तान में भी जो लोग हज करने के लिए नहीं, वो कंपनियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आपको स्टे देती हैं, चाहे जमरात की सहूलत हो, चाहे अरफात में स्टे हो, वहां पूरे दिन का क्याम हो, खाने पीने की बात कर लें, यानी हकीकत में मनोसलवा के साथ आपको अपना मेहमान करते हैं। और अभी तो पाकिस्तान की से ये जो कंपनियां लेके जा रही हैं वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं, यू मस्ट ट्राई इट। तो बताइए अकाल मॉर्गेजेस से शिराज, क्यों हम शिराज से कॉन्टेक्ट करें?
ये आपने जो बात की है उम्र वाली, सबसे पहले ये बता दूं, लास्ट टाइम जब मैंने पैकेज लिया अपना पाकिस्तान से और कुछ मैंने यहाँ से बुक करवाए थे, तो ये 100% आपकी बात सच है कि वहां पे भी जो कंपनीज बैठी हुई हैं वो ऐसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप दंग रह जाते हैं।
मैं मेरी अपनी फैमिली के कुछ लोग गए थे लास्ट ईयर, और आप यकीन कीजिएगा वो कहते हैं कि एग्जैक्टली वही वीवीआईपी टेंट्स जो कनाडा से दे रहे हैं, और वो आपको डबल में पैकेज पड़ता है, 22,000 तक जा रहा है। ये मैं 17,000-18,000 तो आज से 5 साल पहले था, आई डोंट नो व्हाट इज दिस ईयर्स डेट, आई कैन कंपेयर इट, बट फैसिलिटीज के लिहाज से ताकि आपकी इबादत में खलल ना आए, एवरीथिंग इज ग्रेट। जी शिराज मुझे आप बताइएगा कि मॉर्गेज के लिए इतने बेशुमार लोग हैं, क्या तवक्को की जा रही है आगे, इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से क्या तवक्को की जाती है, आज आप क्या शेयर करेंगे कि अगर हम शिराज, और मैं तो हमेशा कहती हूं कि मैंने जाती तौर पे भी अगर कभी मुझे जरूरत होती है तो आई काउंट ऑन शिराज, बताइए हमें।
हम लोग बेसिकली पिछले 22 साल से मॉर्गेज हम लोग सोल्यूशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, अकाल मॉर्गेज है ना वो अपने नाम और काम दोनों की वजह से जानी जाती है। किसी भी किस्म की अगर हमारे बहन भाई कोई मॉर्गेज देख रहे हैं, चाहे कोई उनको रेजिडेंशियल मॉर्गेज चाहिए या उनको कोई कमर्शियल मॉर्गेज चाहिए या किसी किस्म की भी वो कोई लाइन ऑफ क्रेडिट उनको चाहिए या होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए या उनको कोई प्लान बन रहा है जी कोई वो कोई फ्रेंचाइज बाय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको कोई बिजनेस लोन चाहिए या फिर उनका कोई इक्विपमेंट फाइनेंसिंग का कोई प्लान है किसी का भी या कोई इक्विपमेंट बाय करना चाह रहा है, तो इन सब चीजों के लिए बेसिकली अकाल मॉर्गेज काम कर रही है। आपका जी दूसरी बात यह है कि जो आजकल की मार्केट थोड़ी सी चल रही है, पहले तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जी कि दिसंबर के अंदर 0.5 का कट देंगे, लेकिन जो रिसेंटली जो प्रीवियस डेज के अंदर एक दोबारा से न्यूज चली है जी के इन्फ्लेशन दोबारा से ऊपर गई है थोड़ी सी, और माइट बी पॉसिबल वो 0.5 ना कट करें जी, 0.25 कट करें, ये भी सुनने में आ रहा है, लेकिन ये तो अब 11 दिसंबर को जब अनाउंसमेंट होगी तो पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। थर्ड चीज ये है अर्पा जी कि अभी मैं बात करना चाहूंगा सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, हमारे वो बहन भाई जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनकम अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब ये अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना अर्पा जी, तो अपनी उस इनकम के अंदर काफी ज्यादा एक्सपेंस डाल के डिडक्शन करके अपनी जो इनकम है ये बहुत कम शो करते हैं। जब ये इनकम लेके ये बैंक के पास जाते हैं ना तो बैंक इनकी मॉर्गेज करने से इनकार कर देता
है। या
मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आरपा जी कि हमारे पास ऐसे लेंडर हमारे साथ काम कर रहे हैं जो स्टेटेड इनकम कौन सी है जो इन्होंने अपने नोटिस ऑफ असेसमेंट के ऊपर शो की हुई है, वो चाहे 50,000 है, चाहे वो 60,000 है, चाहे वो 40,000 है, उसके ऊपर बगैर इनकी किसी ट्रेडिशनल इनकम की वेरिफिकेशन किए इनकी जो मॉर्गेज है आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर करके दे सकते हैं। सारे जो बैंक हैं अल्फा जी, वो जो स्टेटेड इनकम है या सेल्फ एम्प्लॉयड की जो मॉर्गेज है उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे और हर एजेंट का उन तक एक्सेस नहीं है। यही वजह है जब हमारे बहन भाई हमारे तक आते हैं ना तो काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि वजह जी हमारी क्लोजिंग हमारे सर पे आ गई है, हमारा टाइम गुजर चुका है, हमें एजेंट कह रहे जी कि हमारी मॉर्गेज जो है वो प्राइवेट लैंडर से होगी। जब प्राइवेट लैंडर की बात करते हैं तो फिर वहां पर उनको हाई इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और फिर लैंडर की फीस भी पे करनी पड़ती है जो 2% भी हो सकती है, 3% भी हो सकती है, जो क्लाइंट के सिचुएशन के हिसाब से लैंडर चार्ज कर रहा होता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट फिर उसके ऊपर ब्रोकर फीस भी होती है। फिर कुछ ब्रोकर ये भी कहते हैं जी कि जितनी लैंडर फीस चार्ज करता है उतनी ही हम लोग फीस चार्ज करते हैं। और ये आपका आई थिंक सो आप लोगों के सुनने में भी आया होगा या एक्सपीरियंस हुआ भी होगा कभी कि जी ब्रोकर ये कहते हैं कि जी जितनी लैंडर फीस चार्ज करता है उतनी ही हमने चार्ज करनी है। लेट इट मीन कि अगर 2% ब्रोकर लैंडर चार्ज कर रहा है तो 2% ही ब्रोकर ने चार्ज करनी है, तो 4%। अगर आपकी मॉर्गेज की अमाउंट ही मिलियन डॉलर की है तो 40,000 तो आपकी चलेगी प्राइवेट लैंडर की फीस में ही। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को पता है कि जी आप लोगों की क्लोजिंग आ रही है तो आप लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें, कॉल करें, अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करें, एटलीस्ट आपको पता हो कि आपका कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद है और किस तरह से आप अपनी डील को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे, अपने ब्रोकर से अपनी फाइल का फॉलोअप नहीं करेंगे तो फिर एट द एंड आपने ही प्राइवेट लेंडर के पास जाना है, आपके ब्रोकर ने नहीं जाना। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कॉल करें, अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करें। हर बंदे का स्टेरियो डिफरेंट है। अर्पा जी हमारे पास 90 लेंडर्स की बकेट है, हम इस बकेट के अंदर से अपने बहन भाइयों के लिए जो अच्छी प्रोडक्ट होती है वो सिलेक्ट करते हैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से ताकि उनको लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप अपना स्टेरियो डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकते हैं जी। नंबर नोट कर लें, शिराज शुफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000। और याद रखें कि अगर हम लोगों ने आपकी फाइल को रिव्यू करके एक मरतबा आपको ओके कह दिया तो हम हमेशा अपने वादे पे पूरा करते हैं।
शिराज, मैंने लोगों का बाजुकात कॉल्स भी आती हैं, तजुर्बात भी बाजुकात होते हैं। मतलब एक आदमी ने कॉल कर दिया तो लोग ये समझते हैं कि हूं जरूरतमंद है, फंसे हुए हैं, जो भी चार्ज करना कर लो। आई लव माई लिसनर शिराज, आई लव देम। और मुझे ये बताइएगा कि आप मेरे लिसनर्स के लिए क्या स्पेशल कर सकते हैं।
देखिए आरफा जी, कोई भी अगर हमें साजोबाज का रेफरेंस देता है आते हैं तो हम लोग उनके लिए जो अच्छी प्रोडक्ट होती है और जो कम कीमत होती है, कम इंटरेस्ट रेट पे होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि वो प्रोडक्ट उनको लिख दें। फर्स्ट रेफरेंस यही होती है कि सोल्यूशन उनका ए लेंडर हो, अगर नहीं निकल रहा, बी पे उनकी फाइल क्वालिफाई कर रही है तो हम उनको जबरदस्ती करके प्राइवेट पे नहीं लेके जाएंगे। हम ये नहीं उनको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चार्ज करेंगे या उनके लिए हम लोग लेंडर के साथ फाइट करते हैं कि उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट लेके दे, उनको अगर कोई लेंडर फीस चार्ज कर रहा है तो कोशिश करके उसकी कम करवा सके, जितनी हम लोग करवा सकते हैं हम करवा के देते हैं। हम ये नहीं करते कि ये बंदा फंसा हुआ है जी अब इससे 3% फीस चार्ज कर लो या 4% चार्ज कर लो, ऐसा मैं ये काम नहीं करता।
बहुत शुक्रिया शिराज, मैंने किसी और की मुझे कम्प्लेन मिली थी, मुझे वल्ला है पे आपकी कभी कोई कम्प्लेन मिली तो नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि देखो बेटा अपनी कम्युनिटी में अगर हम अच्छे तरीके से करेंगे तो हमें रेफरेंसेस भी तो उसी हिसाब से मिलेंगे। बट आई हैव ऑल द गुड फीलिंग्स फॉर यू। अपना नंबर दीजिए प्लीज।
आपको किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्विक क्लोजिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, शिराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000।
थैंक यू वेरी मच शिराज शफीक से मैंने आपकी बात कराई। मैं आपको एक शिराज शफीक की तो बात करा दी और एक मुलाकात की तरफ भी लेके बढ़ना है। आज शाजिया साहिबा 6 बजे तक होंगी, मेरा ख्याल है 7 बजे के करीब हमारा, या 6 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब, आई डोंट नो क्या स्केड्यूल है। एक इंटरव्यू जरूर सुनिएगा और ये ई आवाज टेलीविजन पे आएगा, उसमें मेरे साथ होंगे जनाब इम्तियाज साहब, इम्तियाज गुल साहब मेरे साथ होंगे, डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड रिसर्च एंड सिक्योरिटी के डायरेक्टर इम्तियाज गुल साहब। बहुत ही मुफीद बातें उन्होंने कही। आप देखिए, जब ये पिछले दिनों का एक बयानिया आ रहा था तो बहुत से लोग बांग्लादेश का जिक्र करते थे और फिर मुजीबुर रहमान का जिक्र किया करते होते थे। फिर उसके बाद जो हसीना वाजिद जब रही मुजीबुर रहमान साहब की बेटी, तो समीउल्ला साहब भी, डॉक्टर समीउल्ला मलिक भी हमारे साथ आ गए हैं। तो हसीना वाजिद जब आई ना, तो इनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिर एक पाकिस्तान के लिए नफरत का एक जज्बा हुआ। खालदा ज़िया के कॉर्नर में भी सॉफ्टनेस थी पाकिस्तान के लिए। मगर अभी पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया हुआ था ढाका, ये डेलीगेशन गया हुआ था, 5 दिन का इनका ट्रिप था, और कहते हैं कि स्टूडेंट्स दे लव पाकिस्तान। एक चीज जो उन्होंने महसूस की, और डॉक्टर समीउल्ला मलिक साहब मेरे साथ हैं, ये 5 लोगों का ताइफा गया हुआ था ढाका, और ढाका यूनिवर्सिटीज ने बुलाया था, स्टूडेंट से मुलाकात थी। कहते हैं कि हसीना वाजिद का दौर एग्जैक्टली सेम दौर था जो इस वक्त भी है, इवन जब इमरान खान साहब का दौर भी था, इमरान साहब के दौर में भी, उस 3.5 साल में भी आर्मी की इतनी इंटरवेंशन थी। आपको याद होगा हमारे हामिद मीर साहब के ऊपर अटैक हुआ था, एक दो और जर्नलिस्ट थे उनके ऊपर अटैक हुआ था, मरवाने की भी कोशिश की गई थी। फिर बाजवा साहब के बारे में बेशुमार न्यूज आप तक पहुंची कि बाजवा साहब किस तरह कहते थे उसको बंद करो, उसको छोड़ो। आज बल्कि बिशरा बीवी साहिबा ने भी एक बयान दिया जिस पर तारड़ साहब ने बाहर निकल के बयान दे दिया है कि जी दो मुल्कों की लड़ाई करने लगी है, कि जब इमरान खान साहब जब पैदल गए थे जूता के बगैर चले गए थे, तो कहते हैं उसके बाद बाजवा साहब के एक के बाद दूसरा फोन आना शुरू हो गया कि आप ये क्या चीज पकड़ के ले आए हैं और दो मुल्कों के दरमियान तनाजा, हम यहां से खत्म करना चाहते हैं मजहबी, और बिल्कुल जी मजहबी इंतहा पसंदी तो खत्म होनी चाहिए, एब्सोल्यूटली राइट, मजहबी इंतहा पसंदी खत्म होनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मजाहिब को, मक्का मौजमा आपने फतह किया तो आपने कुरैश को कहा था कि अगर आप साथ चल सकते हो तो बाहर निकल आओ, इस्लाम कबूल कर लो, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपने घरों के दरवाजे बंद करके, हालांकि क्या मुश्किल था, तलवार की नोक के ऊपर तो कुछ भी वो कर सकते थे। तो मजहबी इंतहा पसंद, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इससे मुतफिक होना कतन जरूरी नहीं है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं बात कर रही थी बांग्लादेश हमारे इस ताइफे के जाने के बारे में, और वो कहते हैं कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहबा ने भी एग्जैक्टली सेम, अब फौज उनके हाथ में थी, पुलिस उनके हाथ में थी, अभी एक उनके जो पुलिस का जो चीफ है चौधरी मामून उसका नाम है, उसके ऊपर उसके हाथ पे जो खून है और जो नस्ल कुशी के बारे में उन पे जो जो चार्जेस लगे हैं, आप देखिए उनको क्या सजा होती है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। मगर मुझे फिर वो जब उनसे बात हो रही थी तो मुझे बहादुर शाह का जफर आ गया कि दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। तो बहरहाल बहुत से लोग इस वक्त की जो हमारी हुकूमत है इसमें बहुत से लोगों को माइंड करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैंने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैं बिल्कुल बचा होकर आपसे ये बात करती हूं। इमरान खान साहब की हुकूमत ने गलतियां की थी, अगर वो ये महसूस करते थे कि बाजवा साहब उनको हुकूमत नहीं करने देते उनको बाहर निकल के रिजाइन कर देना चाहिए था, डेफिनेटली उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। अगर इस वक्त की जो हुकूमत है PDM-1 और PDM-2 की जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर उनमें फौजी फौज चल रही है और आपने आपको कंधे पे रख के आपके बंदूक हैं, तो पॉलिटिशियंस का कसूर है। अब मुझे कल इतना दुख हुआ वो मीटिंग देखने के बाद कि मेरी फौज की जिम्मेदारियां कुछ और हैं, मेरे जर्नल्स की जिम्मेदारियां कुछ और हैं, मगर पैसे और इक्तदार की हवस ने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रख दी है। और वो लोग बड़ा एतराज करते हैं कि जनाब भुट्टो साहब के दौर में अयूब खान साहब जो थे और वो भुट्टो साहब जबरदस्ती लेके आ गए थे फौजियों को असेंबली हॉल में लेके आ गए थे, तो अब भी वही है कि प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ और फौज और मुल्क में आए दिन टेररिस्ट के अटैक हो रहे हैं। फिर आपने अपने साथ मुल्लाओं को भी साथ मिला लिया कि एक मौलवी साहब निकलते हैं और फतवा दे देते हैं कि आप VPN ब्लॉक हैं, और दूसरे मौलवी साहब तारिक जमील साहब की बात कर लें, 10 और उलमा की बात कर लें, उन्होंने कहा भाई VPN तो फिर आप फोन भी बंद कर दें। तो आज उनका मौलाना साहब का बयान आ गया कि वो टाइपिंग के बीच में गलती हो गई थी, VPNs आर नहीं, हाँ गंदी चीज देखना हराम है, बिल्कुल गंदी चीज देखना हराम है। कुरान की एक आयत है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसका तर्जमा। अगर आप सूरत यासीन का एक जगह तर्जमा याद करें तो उसमें है कि ये वो दिन होगा जिस दिन तुमको वो जुबान से बोलने की जरूरत होगी, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारे पांव बोलेंगे कि तुम्हारे पांव तुमको किस तरफ लेके गए थे। अगर उसकी तफसील में चले जाएं, हाथ बोलेंगे कि मेरे हाथों से क्या गलत, आंखें बोलेंगी कि हमसे क्या गंदी चीजें दिखवाई गई थी। बुरा मत देखिएगा, मगर जैसे अवाम वैसे आपके इक्तदार करने वाले, चाहे वो किसी भी पोजीशन में वो लोग हैं, कुरान की और सुन्नत के लिहाज से ये बात है, जैसी कौम वैसे वैसे लीडर है। अनफॉर्चुनेटली हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने वीपीएनस का जो और डिजिटल बदमनी का जो बहुत तस्करा कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने नंगी फिल्में निकाल के बाहर रखी थी ना। और मेरे बहुत मोअज्ज़ज़ मोहतरम भाई जनाब डॉक्टर साहब मेरे साथ इस वक्त हैं, डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे, और डॉक्टर साहब की बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब ने मुझे इस बात पे चेक किया कि आरफा बीबी आप अपने आप को क्यों गुनाहगार करती हैं, आपको क्या पता वो फिल्में बनाते हैं कि नहीं। आप सही कहते हैं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मुझे क्या पता। मगर ये सारे जज जो लिखते हैं कि हमारे लाइटों के बीच में भी कैमरे हैं, अब मैं किसकी बात पे यकीन करूं और किस पे। जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज, आपके हाई कोर्ट के जजेस ने ये बात कर दी, कौन गलत कौन सही। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहना चाहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब लिखते हैं, बहुत खूब लिखते हैं, और जाहिर है कि कुछ बातें जो ना बताने वाली होती हैं वो नहीं बताते, जो बताने वाली होती हैं वो बता देते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है तो क्या फरमाएंगे आप? आज मौलवी साहब ने बाहर आके कह दिया, मौलाना साहब ने, कि वो जी टाइपिंग में गलती हो गई थी, वीपीएनस तो हलाल, गंदी चीज देखना मना है, मगर आपके इदारे गंदी चीजें बना के सप्लाई करते हैं।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھر آپ کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میں آپ کی چند منٹ پہلے سے گفتگو سن رہا تھا اور یقیناً آپ سے جو میری بات ہوئی تھی میں اسی وقت میں نے جو قرآن کی آیت سامنے پڑھی ہوئی ہے ابھی فوراً میرے دن میں آیا کہ مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے۔ وہ انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ اگر یہ کام کر رہے ہیں، اور جیسا آپ نے فرمایا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں کسی ایک آدمی کا نام لے کے نہیں کہنا چاہ رہا تھا تاکہ میری گواہی نہ ہو جائے یا حق میں یہ خلاف گواہی نہ ہو جائے۔
آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی چیک کیا تھا، مگر میں
آپ کی بات کی میں تائید کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، اور اس میں ہماری انٹیلیجنس بھی شامل ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ سیاستدانوں کی، یعنی ہمارے، جیسے آپ نے مجھے آپ کی آج بہت ایک بات بہت پسند آئی، آپ نے قرآن و سنت کے لحاظ سے ایک بات کہی کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ان کے حاکم ہوں گے۔ یہ بالکل درست فرمایا آپ نے، مطلب ایسی بات ہے، اور یہ قرآن کی نصوص بھی ہے، احادیث بھی اس بے شمار ایسی احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ جب کرتی ہیں تو اس میں ہماری ایجنسی بھی شامل ہے۔ بہت یہ اس میں کچھ چھپنے والی بات نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں ہمارا کام ہے جی، ہم ملک کی سلامتی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ ملک کی سلامتی، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اگر وہ ملک کی سلامتی کے لیے ہے تو پھر وہ دشمن کیوں نہیں چاہیے؟ مطلب اگر وہ لوگ جو پاکستان میں آپ کے حکمران ہیں جن کے انڈر آپ کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے باس کی کو فلمیں بناتے ہیں یا کسی اور سیاستدان، جتنے بھی سیاستدان ہیں، کل کلا اگر آج اے کی حکومت ہے، کل بی کی ہو سکتی ہے، پھر سی کی ہو سکتی ہے، تو یہ بار بار آئینی طور پہ ان کے آپ کے حکمران ہیں، تو انہیں آپ کو اپوائنٹ کرنا ہے بڑے عہدے پہ، انہیں کے دستخط سے آپ کی سلیکشن ہوگی۔ تو اگر آپ ان کی بھی فلمیں بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت آپ کی آنکھیں کیوں نہیں کھلی رہے گی جب یہ بن رہے تھے؟ اس وقت آپ قوم کو بتاتے۔ لیکن یہ کہ جب آپ چیزیں پارشلی لیتے ہیں کہ جو آپ کے حق میں اچھی ہوں وہ رکھ لیں، उसे ब्लैकमेल कर लिया जाए, ब्लैकमेल के बाद हर काम किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए, अभी अमेरिका में इंतखाब हुआ, आप देखिए कि अभी यानी उसी दिन ही मतलब कमला हैरिस ने उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर उससे भी शिकस्त तस्लीम कर ली, और जो बाइडेन ने ट्रंप को बुला के उसे कहा कि भाई हाँ बड़ा ये ट्रांजिशन जो है इकतदार की मुंतकली की बड़े आराम से कर देंगे। आपके मुल्क हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ, ईरान में भी ऐसा होता है, सब मुल्कों में होता है। आखिर क्या बीमारी है हमारे पाकिस्तान में, जो एक जीत जाता है तो हारने वाला जो है वो जीतने वाले जीत को भूल ही नहीं करता। आखिर कुछ तो बात है
सर, आप सिर्फ हारने जीतने की बात नहीं करें। आज आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं आजकल अपनी काबीना की तश्कील में हैं, कर रहे हैं। उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल के लिए एक नाम दिया था, गेट्स का नाम दिया था जो कि गवर्नर भी हैं, और उन्होंने आज अनाउंस किया है कि वो इस नॉमिनेशन से अलग होने जा रहे हैं, क्योंकि इन पे इल्जाम था कि इन्होंने 17 साल की एक लड़की ही थी पार्टी से ही, उसको सेक्सुअल एनकाउंटर उसके साथ हुआ था। अब उसमें इनको ये था कि जीओपी में शायद इनको वोट ना मिले, मगर उन्होंने यानी उन्होंने कहा कि मतलब इतनी डिस्ट्रैक्शन हो गई है कि मैं इससे अटॉर्नी जनरल की चीज से अलग होना होने का ख्वाह हूं। मतलब वहां ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अगर प्रॉब्लम में है तो वो असाइड हो गए।
आफरीन है आप कह रहे हैं कि हम सब मुंह खोल के फौरी तौर पर काफिर कह देते हैं, लेकिन काफिर का किरदार देख लीजिए क्या है।
सही।
हमारे यहाँ तो इससे भी ज्यादा बद किरदार लोग हैं जो मौजूद हैं, सीटों से चिमटे पड़े हैं।
सही।
मुसीबत तो यही, तो यही तो दुख की बात है। हम खुद को मुसलमान कहते हैं, किस चीज के मुसलमान हैं? अगर जो इस्लाम ने सिखाता है, अगर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया हमारा मुल्क बना है और अल्लाह ताला ने ये मौजूदाती इससे रियासत बनाया है, तो इसमें तो कुरान की हुकूमत होनी चाहिए। वो जो अमेरिका वाले जिसे बिल्कुल अलग हो गया, वो मतलब वो तो कुरान को नहीं मानता, वो तो इस्लाम को नहीं मानता, वो तो एथिक्स को मानता है, अखलाक को मानता है, अखलाकी तौर पर उसने अलग कर लिया। और इस्लाम में सबसे बड़ी बात ही अखलाक की है, इन्ना आसनकुम खैरकुम, तुम इससे बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। अब आप देखिए हमारे यहाँ अखलाक का क्या हाल है, हम सुबह दोपहर शाम जो है एक दूसरे को गालियां देते थकते नहीं है, और ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि खुदा की पनाह। सोशल मीडिया में देख लें क्या आप, जितनी बैशिंग हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे हो रही है क्या किसी और मुल्क में हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। मैं भी एक इंटरनेशनल मुल्क में बैठा हुआ, आप भी इंटरनेशनल में बैठी हुई, मतलब आप देख लीजिए क्या हो रहा है, मतलब कैसे कैसे पैगाम आपको आते हैं कि आप लर्ज उठते हैं, आप घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है, कि ये क्या गुनाह हो गया है। आपने अभी जिक्र किया था कि वहां पे सूरह यासीन का आप हवाला दे रही थी कि आंखें भी गवाही देंगी, हाथ भी गवाही देंगे, यकीन है बड़ी अच्छी बात है आपने आज की। मतलब बात यह है कि जब अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह के कुरान में ये भी कहा है कि अल्लाह कहते हैं इनको अपने अमाल का पता होगा कि हम क्या करके आए हैं, लेकिन ये कि फिर भी हम इनकी शहादत के लिए इनके जिस्म की गवाही लेंगे।
ऑन द लाइटर मूड एक बात कर सकती हूँ?
जी फरमाइए।
इसी सूरत में ना एक जगह काफरों ने सवाल किया, उसी में है कि ये पूछते हैं कि मतलब अगर अल्लाह ताला के ये इतने ही गरीब हैं, तो इतने ही करीब हैं मुसलमान, तो फिर ये गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो जो कुफारे मक्का थे वो तो बड़े अमीर थे। तो वो ये सूरह यासीन में ये भी इंदराज है इसका, कि वो पूछते हैं कि भाई अगर ये अल्लाह के इतने ही करीब हैं, तो फिर अल्लाह इनको रोटी खुद क्यों नहीं देता था, मतलब ज़कात खैरात की इनको क्यों जरूरत है? और इसी में जाके मुझे लगता है जैसे फिर अल्लाह मियां के पास भी जाके ना ये जो आपके जनरल्स हैं ना, और ये जो आपके वडेरे हैं, इन्होंने डंडी मार के आगे निकल जाना, तो गरीबों ने फिर पास जाना सच बोलते बोलते।
बात ये है अब्बा कि अच्छा चलिए, आपने वैसे तो बड़ा फनी अंदाज बात की, लेकिन बड़ी अहम बात की आपने, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने। बात यह है कि हम खुद जानते हैं, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कितना कहा कि सबसे ज्यादा महबूब पैगंबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब आप ये देखिए कि अल्लाह के नबी के घर में कई कई चांद यानी कई कई महीने चूड़ा नहीं जलता था, फाके भी रहते थे, फाके भी किए उन्होंने, पेट में पत्थर भी बांधे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा ही एक सवाल ईसाई ने किया था सैयद अल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह से, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सबसे बड़े महबूब नबी हैं, अल्लाह के मरसल महबूब नबी हैं, तो उनका सबसे जो महबूब तरीन जो उनके थे, उनके जो उनका उनका नवासा था जो हुसैन, उसे जो खुद मुसलमान ने मार के शहीद कर दिया, उसे अल्लाह ने उन्हें क्यों बचाया? यानी सवाल उसमें यानी उस पादरी भी कह रहा, मैं उस पादरी का नाम भूल रहा हूं, लेकिन ये एक बड़ी मशहूर, अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, تو یہ مکالمہ ہوا تھا، مکاتبہ مناظرہ تھا، تو تارا شاہ بھائی نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول تھے نا، تو اللہ کے پاس گئے تھے کہ میرے نواسے کو بچائیں آپ، لیکن اللہ نے کہا یہ بڑے ظالم، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، میرے بیٹے کو پھانسی لگا دیا، میں کیسے تمہارے نواسے کو بچاؤں، یعنی عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. اللہ نے قرآن میں سب رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے تو صحیح زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی، یہ تو ایک آزمائش، یہ تو ایک ہماری دنیا جو ہے، دنیا اچھی جن دنیا جو ہے ایک جیل کی طرح ہے. جیل میں کتنی مراحت ملتی ہیں آپ کو، جو جیل سے باہر ہوتے ہیں، جو مجرم مجرم جیل سے باہر ہوتے ہیں انہیں بڑی مراحت ملتی ہیں، لیکن جو جیل کے اندر ہوتے ہیں چاہے وہ بے گناہ ہی کیوں نہ گئے ہوں وہ جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بڑے بڑے یعنی روسا بھی آئے، اللہ کے راستے میں بڑے بڑے خیرات کرنے والے بھی آئے، اور یہاں تک آئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو غنی کا خطاب دے دیا. سیدنا عثمان غنی کو غنی کا خطاب دے دیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دیکھ لیجیے، اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو دیکھ لیجیے، صحابت میں آتے تھے. اب میں عبدالرحمن عوف کا اب آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ان کے خادم نے روزہ کھولنے کے لیے کچھ دیا، روزہ کھول لیجیے، تو روزہ سب جو سامنے آئے بہت سی چیزیں تھیں روزہ کھولنے کے لیے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر ہم سے کہیں زیادہ بہتر تھے، وہ مکہ کے شہزادے تھے، لیکن جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم کے اوپر ایک بوریا تھی جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، اگر سر کا ڈھانکتے تھے، سر ڈھانکتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانکتے تھے سر ننگے ہو جاتے تھے. رسول اللہ ان کو دیکھ کے بل بلا کے رو بھی اٹھے ان کو دیکھ کے، اور رسول اللہ نے خود گواہی دی ان کی لاشی کے اوپر، مصعب میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے تمہیں مکے کے، تم شرارت تھے کہ جب تم مکے گلی سے گزرتے تھے تو تمہاری خوشبو سے لوگ پہچان جاتے تھے یہاں سے مصعب گزر گیا ہے، اور مکے میں سب سے پہلی خلعت، سب سے بہترین لباس تم پہنتے تھے، لیکن آج تمہارا یہ حال ہے کہ تمہارے سمے بوریا ہے، تمہارے بال جو ہنکر گالو تھے. انہوں نے رونا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ان کا حضرت حمزہ سے اچھے تھے، حضرت فرمایا حمزہ سے بہت اچھے تھے، ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا. آج ہمارے سامنے سب کچھ آ گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم نے جتنے بھی اچھے عمال کیے ساری جتنی بھی چیزیں آ رہی ہمیں دنیا میں مل جائے. انہوں نے رونا شروع کر دیا، ان کو کھانا اٹھا دیا، ان کو اٹھا لو. پھر عائشہ نے فرمایا کہ ہمارے مذہب میں سب سے پہلی بدعت یہ آئی تھی کہ دو سالن کٹھے دسترخوان خان پہ آ گئے، دو سال یعنی سادگی سے تھوڑا آگے بڑھے نا، دو سالن آگے ہمیں ایک سالن ہوتا تھا. یہ عالم آپ یہ جو چیز ہے نا، آپ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو سلن کبھی پورا پروگرام رکھ لیں انشاءاللہ.
بہت شکریہ. میں تو ذاتی طور پہ اتنا کہتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنے طور پہ قرآن پاک کو لفظی معنی کو سمجھتے ہوئے اپنی ذات کے امپلیمنٹ کی کوشش کریں. میرا نہیں خیال کہ کسی کے کچھ کہنے سے کوئی تبدیلی آئے گی. نو نیور. بہت سے ماں باپ اپنی بچیوں کے اوپر سختی کر کے کہتے ہیں تو بٹ میں جب چینج آنا ہے تو آپ رول ماڈل ہیں، چینج آئے گا قرآن کے اگر الفاظ کو سمجھیں گے چینج آئے گا. نہ کسی کے کہنے سے چینج آتا ہے، نہ کسی کے کرنے سے چینج آتا ہے. ڈاکٹر صاحب، بشرا بی بی نے جب یہ بیان دیا ہے کہ بھائی عمران خان جب آئے اور جنرل باجوا، اب یہ تو مجھے لگتا ہے بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے لگا ہے. اور انہوں نے کہا کہ تم کس کو ساتھ لے آئے ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو شریعت کے نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تم شریعت کو ٹھیکیدار بن کے آ گئے ہو. اور واقعی شریعت کا نظام ہم کہتے ہیں کہ مسلمان مملکت ہے. آج تک سود کا نظام ختم ہو سکا پاکستان میں؟ سودی نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بہت ہی بے وقت راگنی بشرا بی بی لکھی معذرت کے ساتھ، بڑی بے وقت راگنی ہے.
انہوں نے کیش کیا اسلامی جذبات کو، کیش کیا.
جی ہاں، بس یہی بات ہے. اس زمانے میں انہوں نے یہ بات کیوں کی جب عمران خان کے شوہر خود حکومت میں، خود خاتون اول تھی، اس وقت یہ بات کیوں
نہیں؟ نہیں نہیں، تب بھی بڑا چرچا ہوا تھا کہ ننگے پاؤں گئے، ننگے پاؤں گئے، تب بھی بڑا چرچا ہوا تھا.
آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے، میں آپ کی اس بات کی تائید کر رہا ہوں، وہ اس بات کی تائید یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ بھائی بات کہی، آدمی خود اندر سے اس میں تبدیل ہو، جو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی تربیت کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت لگے گئے تو جب یہ بات اس وقت ہوئی تو اس وقت کہہ دیتے. آپ نے خود کہا اپنے پروگرام انٹرویو میں کہا اعتراض کرنے کی بجائے وہ خود ہٹ جاتے، آتے قومی پریس کانفرنس کرتے، کہتے ہیں باجو سے یہ نجات مطالبہ کر رہا ہے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، مطلب یہ کرنی تو یہ چاہیے
بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، مگر دیکھیے بالکل اگر وہ اتنا شریعت کے خلاف تھے باجوا صاحب، تو میں تو بالکل کہتی ہوں کہ ان کو عمران خان صاحب کو تبھی ریزائن کر دینا چاہیے تھا. بٹ आज भी हर आदमी बिकाऊ माल बैठा हुआ है, जो बैठे हुए हैं इस वक्त फौज के साथ वो भी तो सारे बिकाऊ ही है ना, मतलब लोगों को। मैं डॉक्टर साहब आज कंपेयर कर रही थी, मेरे साथ इम्तियाज गुल साहब थे और तुनेजिया का यूथ कंट्रोल नहीं हुआ, इजिप्ट का यूथ कंट्रोल नहीं हुआ, आप टेनमेंट स्क्वेयर की बात कर लें और टेनमेंट स्क्वेयर के बाद आप, वो तो पुरानी बात हो गई चलें, फिर भी आप तुर्की की बात कर लें कि लोग टैंकों के आगे लेट गए थे, फौज को पसपा होना पड़ा था। रिसेंट एग्जाम्पल है बांग्लादेश की एग्जाम्पल है, हमारे इदारे क्यों नहीं समझ रहे, क्या वजह है कि इन्होंने मुगल बादशाहों और वो जो इवन ऑटोमन्स में भी ऐसे लोग आए थे जिनको मदाह प्रस्त या मदाह करने वाले, उनकी तारीफ करने वाले दरबारी अच्छे लगते थे, नशे में धुत रहा करते होते थे, क्या वजह है कि ये दे आर नॉट रियलाइजिंग, या तो वो सामने आके खुल के हुकूमत करें